ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है भारत यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत मनोज कुमार भारती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना।
1992 में कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत से लेकर हालिया उच्च स्तरीय यात्राओं और रणनीतिक समझौते तक भारत और यूक्रेन के बीच संबंध काफी विकसित हुए हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा भी संपन्न हुई है। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद से ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विश्व बंधु के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक शांति निर्माता और विश्व मंच पर एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व राजदूत मनोज कुमार भारती।
धन्यवाद।
सबसे पहले भारत और यूक्रेन के संबंध इतिहास के बारे में तो आपसे जानना चाहेंगे।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद जब यूक्रेन का जन्म हुआ तो भारत उन पहले देशों में था जिन्होंने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे यूक्रेन के साथ। 1992 में जब हमने अपने संबंध स्थापित किए यूक्रेन के साथ, तो उसके साथ ही एक लिस्ट थी जो बायलैटरल रिलेशंस में इम्पोर्टेंट मानी जाती है, कि किस तरह के संबंध हैं, किस किस तरह का सहयोग दोनों देशों के बीच में होगा। यूक्रेन सोवियत यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए। यूक्रेन ही वो जगह थी जहां पे सबसे ज्यादा काम हुआ करता था सोवियत यूनियन में। और जब वो अलग हुआ तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि यूक्रेन को अगर यूरोप के अन्य देशों के साथ देखा जाए तो ये कंट्री क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप में सबसे बड़ा देश है और सबसे ज्यादा फर्टाइल भी है। इसकी आबो हवा कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन सब कारणों से यूक्रेन एक बहुत ही पोटेंशियल और डेवलप्ड कंट्री बनने की राह पर था। जो कुछ भी 1990s के दशक में हुआ, जिसके कारण यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए राजी हुआ यूक्रेन, वो सब केवल इसलिए था कि यूक्रेन को एक अश्योरेंस दिया गया था कि आपके अगेंस्ट कुछ भी अगर होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। आप 90 के दशक में देखिए तो उसमें ही हमारे यहाँ एक पोखरण टेस्ट हुआ था और उस टेस्ट के बाद आप सबको याद होगा कि पश्चिमी देशों ने भारत के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया था। अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन भी उनमें शामिल था और उसके कारण हमारे संबंधों में एक खटास आई जिसका असर काफी दिनों तक रहा था। लेकिन 2015 तक आते आते एक नया ट्रेंड शुरू हुआ जिसके तहत यूक्रेन को समझ में आ गया कि भारत जैसी बढ़ती अर्थव्यवस्था से अलग रहने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और भारत से उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, सहायता मिल सकती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चांसेस मिल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो 2015 के बाद हमारे ट्रेड में बहुत ही जबरदस्त उछाल आया था। 2015-16 में जहां हमारा ट्रेड $1.2 बिलियन हुआ करता था, 2018 तक होते होते ये $3.2 बिलियन हो गया था। ये दूसरी बात है कि इस $3.2 बिलियन में हमारा एक्सपोर्ट यूक्रेन में केवल $500 मिलियन का था, जबकि यूक्रेनियन एक्सपोर्ट जो भारत को होता था वो लगभग $2.6 बिलियन का था। मेंटेनेंस एंड सपोर्ट जो हम करते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स की, अपने टैंक्स की, जो सोवियत यूनियन के समय के बने हुए हैं, ये सब रिपेयर मेंटेनेंस यूक्रेन से ही होता है और हमारे साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा है डिफेंस कोऑपरेशन में।
भारती जी, 91-92 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दौरा किया और साथ ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और भारत यूक्रेन के संबंधों के लिए ये क्या संकेत देता है?
जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ा बहुत 1992 से हमारे संबंधों का इतिहास, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे कोई विजिट नहीं हुई थी और इस मौके पे जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आए हैं और गए हैं, वो सचमुच एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। दो तीन कारण हैं इसके। एक तो जो अभी युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, उसमें भारत जैसा रोल अदा कर सकता है उसके लिए ये विजिट एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आप सब जानते हैं कि पिछले महीने प्रधानमंत्री रूस भी गए थे, वहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की और उन्हें भी फिर से उन्होंने कहा कि इस दौर में 21st सेंचुरी में एक युद्ध का स्थान कहीं नहीं देखा जाता है। उसके बाद उसके एक महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन जाना इस बात को दर्शाता है कि भारत कितना अडिग है अपने इस प्रयास में कि इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। दूसरा, यूक्रेन एक महत्वपूर्ण सप्लायर है इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन्स का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और जब तक ये युद्ध हो रहा है तब तक इसमें काफी सारी बाधाएं हो रही हैं, उत्पादन में भी और निर्यात में। भारत चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को काफी क्लोजली देखता है, काफी नजदीक से देखता है, उस हिसाब से भी भारत का ये प्रयास कि युद्ध जल्दी खत्म हो, प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा, वहां के प्रेसिडेंट से बातचीत, ये सब अपने आप में एक सीरियसनेस दिखाता है भारत के प्रति कि भारत कितना ज्यादा कंसर्न्ड है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इंटरेस्ट को लेकर।
भारतीय जी, दोनों देशों के बीच सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं और वो कितने महत्वपूर्ण हैं?
इसमें ट्रेड, जैसा कि हमने अभी अधिक बताया कि भारत यूक्रेन से क्या क्या चीजें लेता है, और भारत से यूक्रेन को जो फार्मास्यूटिकल सप्लाई होती है उसका यूक्रेनियन राष्ट्रपति ने भी जिक्र किया है और वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि भारत उनके यहाँ एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने का एक बहुत ही रिलायबल सोर्स है। इसके साथ साथ हमारा एक और इंटरेस्ट अभी हाल फिलहाल पिछले दशक में आया है, वो है कि बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए। अपने पीक के जमाने में लगभग 20,000 भारतीय विद्यार्थी वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। इस युद्ध के कारण वहां से काफी ज्यादा डिसरप्शन हुआ और आजकल सुना है, जैसा कि पता चला है, बहुत सारे विद्यार्थी वापस आए हैं, लगभग 2,000 से 2,500 के बीच में विद्यार्थी वापस आ गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार ये युद्ध खत्म हुआ तो फिर से बहुत बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे यूक्रेनियंस को इंडियन कल्चर में, इंडियन डांस में बहुत नजदीकी रुचि है, बहुत प्रगाढ़ रुचि है
जी।
और हम उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, चाहे वो ICCR का हो या ITEC स्कॉलरशिप के हिसाब से हो। एक बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने इंडिया से किसी तरह का प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद वो गवर्नमेंट पोजीशंस में काफी आगे आए हैं यूक्रेनियन सरकार में। इन सब के साथ साथ आप अगर देखें तो हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बहुत अच्छा है। भारतीयों का एक बहुत बड़ा समुदाय यूक्रेन में रहता है जिसे उनके आदर्शों के लिए, उनके काम करने की प्रतिभा के लिए और उनके यूक्रेन से प्यार के लिए बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ये समुदाय इनफैक्ट भारत के राजदूत की तरह ही वहां पे काम करता है
जी।
इन सब को लेकर मैं कहूंगा भारत और यूक्रेन के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है आज के इस तारीख में भी।
हमने देखा है बीते पिछले कुछ सालों में कि भारत की विदेश नीति में कई तरीके के बदलाव आए हैं और खासकर यूरोप क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज पे भी अब पहले से ज्यादा दिया जा रहा है। और साथ ही आपने अभी मानव सहायता ह्यूमैनिटेरियन एड की भी बात करी थी, हमने देखा लगभग 2 टन के मेडिकल इक्विपमेंट्स भी इस बार यूक्रेन को भारत की ओर से दिए गए, तो ये भारत के विश्व बंधु की छवि को कितना मजबूत करता है।
आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और ये बात नोटिस करने लायक है कि पिछले 5 सालों में भारत ने एक पॉलिसी बनाई है कि जहां जहां भारतीय राजदूतावास नहीं थे उन सब में हमारा प्रेजेंस हो, और उसकी शुरुआत कई की गई है सेंट्रल यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज के साथ साथ। हाल में ही बहुत सारे देशों में लिथुआनिया, लात्विया, एस्टोनिया वगैरह में हमारे राजदूतावास खोले गए हैं। ये दोनों तरह से है, आपने जो विश्व बंधुत्व के बारे में कहा वो तो है ही, उसके अलावा भारत अपनी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत को भी यूटिलाइज करके अपना प्रेजेंस दुनिया में सारी जगहों पे लाना चाह रहा है। जैसे जैसे हम विश्व के लेवल पे ज्यादा अच्छा ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने के लिए तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा प्रेजेंस सारे देशों में होना स्वाभाविक है। भारत जैसा देश जो कि अब पॉपुलेशन में भी सबसे ज्यादा है, इकोनॉमिक पावर में भी एक बढ़ती हुई शक्ति है, उस हिसाब से देखें तो ये बहुत ही स्वाभाविक स्टेप है।
भारती जी, आप कौन कौन से अवसर उभरते देखते हैं जो भारत और यूक्रेन के संबंधों को और महत्वपूर्ण बनाएंगे या बनाते हैं?
सबसे पहले तो मैं कहूंगा किसी तरह से अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध थामने में सफल हुए तो यूक्रेनियन लोगों में और यूक्रेन की सरकार में भारत के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह है वो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा उसको
जी।
और ये अपने आप में ही इतने सारे तरीकों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को अच्छा करेगा जिसकी अभी हम शायद कल्पना भी ना कर सकें। वो शुरू होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जो कि अभी स्टंटेड है, जो कि बहुत रुका हुआ है। पोटेंशियल ये है कि हमारा ट्रेड जो अभी 3.2 बिलियन डॉलर है, ये अभी मतलब पीक में था, युद्ध के बाद ये कम हो गया है, ये वापस न केवल उस लेवल पे आएगा, ये लगभग उस लेवल से दुगना होने की पोटेंशियल है। 5 से 6 बिलियन डॉलर का ट्रेड भारत और यूक्रेन के बीच में हो सकता है। यूक्रेन भारत को बहुत कुछ सप्लाई कर सकता है और भारत के लिए यूक्रेन एक ऐसा दोस्त है यूरोप में जो हमेशा ही प्रभावशाली रहेगा। उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन, अभी भी हम बहुत सारी चीजों के लिए जो हमारे सोवियत के जमाने के उपकरण हैं, उनके रखरखाव के लिए हम यूक्रेन पर भरोसेमंद हैं। हमारा जो ये सबमरीन कार की टेक्नोलॉजी है जो हम सबमरीन डेवलप करना चाहते हैं, उसमें भी यूक्रेन के पास बहुत सारी विद्याएं नॉलेज है जिसको हम उनसे शेयर कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग में यूक्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। उसी तरह से चाहे वो स्पेस में हो, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो नए मटेरियल्स की खोज चलती है उसमें हो, चाहे चिप बनाने की जद्दोजहद हो, इन सब में यूक्रेन हमारा महत्वपूर्ण साथी सिद्ध हो सकता है। और हमारा नेचुरल साइंटिफिक कोऑपरेशन में जो रिसर्च पर हम काम कर सकते हैं उसके लिए भी प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होगा।
अंत में आपसे संक्षिप्त में मैं जानना चाहूंगा कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को व्हाइट हाउस ने, साथ ही में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव ने भी संघर्ष समाप्त करने में महत्वपूर्ण बताया। जब ऐसे बयान दुनिया के बड़े देशों और संस्थाओं से सामने आते हैं तो ये संकेत देता है कि अब भारत की तस्वीर विश्व में काफी बदल चुकी है, इसे आप कैसे देखते हैं?
इसमें कोई शक नहीं है कि वैश्विक स्तर पे भारत की पहचान बहुत अच्छी हो रही है, हो गई है और होती जा रही है। जिसका रेफरेंस आपने दिया यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका के लीडर्स का, वो ये संकेत देता है कि उन सबको भी इस बात से आशा बंधी है कि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन का दौरा एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होगा इस युद्ध को समाप्त करने में। सबको ये आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो वैश्विक छवि है और उनकी पहुंच जो बड़े बड़े लीडर्स के पास है, उसमें उनका राष्ट्रपति पुतिन से, उसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की से जो भी एक के बाद एक मुलाकात हुई है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह की बातें डिस्कस की गई हैं, उसमें भी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक इनोवेटिव अप्रोच की जरूरत है, इस युद्ध के समाधान के लिए एक इनोवेटिव स्टेप लेने की जरूरत है, ये सब दर्शाता है कि भारत इसमें योगदान देने के लिए तैयार है और पहल करने के लिए भी तैयार है।
हमें पूरी आशा है कि ये दौरा काफी सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा और भारत की छवि को विश्व के पटल पर और मजबूती प्रदान करेगा। मनोज कुमार भारती जी, आपका आकाशवाणी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका भी धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत मनोज कुमार भारती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।